हमें ये घर खाली करना पड़ेगा, इकबाल ने धीमी और टूटी हुई आवाज में कहा। तभी इकबाल का फोन बजा जो पास ही रखा था। नूर ने आगे बढ़कर फोन उठा लिया। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? नूर ने संभल कर पूछा। असल में मैं एक अकादमी की प्रिंसिपल बोल रही हूँ, उधर से आवाज़ आई। जी, नूर बोल रही हूँ, नूर ने जवाब दिया। देखिए, हमारी एक अकादमी है और हमें इंटेलिजेंट टीचर्स की ज़रूरत है, प्रिंसिपल ने कहा। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? नूर ने तुरंत सवाल किया। आप बीए सेकंड ईयर में हैं और आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, प्रिंसिपल ने बताया। आपके एग्जामिनर मेरे दोस्त हैं, वो जानते हैं कि मुझे हमेशा अच्छे और इंटेलिजेंट टीचर्स चाहिए। मेरे ज़्यादातर टीचर्स वही स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें पढ़ाई के साथ पैसों की ज़रूरत भी होती है। उन्होंने ही आपका नाम रेकमेंड किया है और नंबर भी वहीं से मिला। नूर कुछ पल के लिए चुप हो गई। मैं सिद्धपुर में रहती हूँ, उसने धीमे से कहा। मेरे लिए वहाँ आना थोड़ा मुश्किल होगा। आप एक बार आकर मुझसे मिल लीजिए, वैसे भी सारा काम ऑनलाइन होता है, प्रिंसिपल ने नरमी से कहा। उसके बाद आप खुद फैसला कर सकती हैं। फिर उन्होंने जोड़ते हुए कहा, और फिक्र मत कीजिए, हम अपने टीचर्स के लिए सस्ती रहने की सुविधा भी प्रोवाइड करते हैं। नूर ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं आपको सोचकर बताती हूँ, उसने कहा और फ़ोन रख दिया। असल में नूर घर की हालत देख चुकी थी, सब कुछ उसके सामने बिखर चुका था। लेकिन शायद जहाँ अल्लाह ने एक रास्ता बंद किया था, वहीं नूर के लिए कोई नया रास्ता खुल रहा था। चली जाओ, किसी ने कहा। नूर ने मुड़कर देखा। साकेत दरवाजे पर खड़ा था, दरवाज़ा खुला हुआ था और वो अंदर आ चुका था। वो नूर की सारी बातें सुन चुका था। वो आदमी हर टाइम तुम्हारे पीछे लगा रहता है, साकेत ने कहा। तुम्हें जो नौकरी मिल रही है, तुम शहर चली जाओ। तुम्हें क्या लगता है, वो मेरा वहाँ पीछा नहीं करेगा? नूर ने सवाल किया। करेगा, साकेत बोला, मगर कुछ ऐसा किया जाए कि उसे पता ही ना चले कि तुम कहाँ रहती हो। फिर साकेत उसे समझाने लगा कि क्या किया जाए ताकि खालू जैसा आदमी नूर का पीछा ना कर सके। तुम मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी फ़िक्र क्यों कर रहे हो? नूर ने पूछा। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं बचताना चाहता हूँ, साकेत ने धीमे स्वर में कहा। और मैं तुम्हारी कोई और मदद नहीं कर सकता, बस इतनी मदद कर दूँ तो मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी। तुम उनसे बात करो, उनका एड्रेस ले लो, मैं खलील से बात करता हूँ। ये कहकर साकेत अंदर चला गया। नूर वहीं खड़ी सोचती रह गई। उधर मायरा किसी और ही सोच में खोई हुई थी। अब सादिया के पास कोई ताकत नहीं बची थी तो कोई बड़ा मसला भी नहीं रह गया था। वो सोच रही थी, अगर रेहान और सादिया का तलाक हो जाता है तो शायद वो भी रेहान की पसंद बन सकती है। हो सकता है तलाक के बाद रेहान उससे निकाह कर ले। आजकल उसे लगने लगा था कि रेहान भी उसे पसंद करने लगा है। वो अपने ख्यालों में ही मुस्कुरा रही थी। तलाक के बाद वो रेहान को पा लेगी। उधर फैजान प्रिंसिपल साहिबा का शुक्रिया अदा कर रहा था। उसके कहने पर ही प्रिंसिपल ने नूर से बात की थी, लेकिन उन्होंने फैजान का नाम नहीं लिया क्योंकि फैजान अच्छे से जानता था कि अगर उसका नाम बीच में आया तो नूर शायद नौकरी ज्वाइन करने से मना कर दे। वो आपको निराश नहीं करेगी, फैजान ने कहा। वो बहुत इंटेलिजेंट है और बच्चों को बहुत अच्छे से ऑनलाइन ट्यूशन दे सकती है। फिर फैजान ने फ़ोन उठाकर माहिरा को कॉल किया। जैसे ही माहिरा ने फ़ोन उठाया, उसने कहा, अगर मैं तुमसे कुछ और भी मांगती तो मुझे वो भी मिल जाता। तुम सोच नहीं सकते तुमसे बात करके मुझे कितनी खुशी मिल रही है। क्या? फैजान ने हैरानी से पूछा। हाँ, मैंने तुम्हें खुशखबरी देने के लिए फ़ोन किया है, फैजान बोला। खुशखबरी? क्या तुम इसी खुशखबरी के लिए फ़ोन कर रहे हो? मायरा ने सीधा सवाल किया। मैं भी चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारा तलाक हो जाए और मैं खुश रह सकूँ। मायरा की बात सुनकर हॉल में बैठी जुबेदा बेगम और अरमान भी परेशान हो गए। फैजान कुछ पल के लिए चुप रह गया। वो तो उसे अपनी नौकरी की खुशखबरी देने वाला था, लेकिन फिर उसने फैसला कर लिया। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, फैजान ने कहा। तलाक, 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 मैं तुम्हें अपने निकाह से आज़ाद करता हूँ। जल्दी ही वकील के पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे, माहिरा ने फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया था। जुबेदा बेगम और अरमान सब सुन रहे थे। जो तुम मुझसे मांग रही थी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, फैजान ने कहा। जुबेदा बेगम परेशान होकर बैठ गई। उनकी बेटी का घर टूट चुका था। एक पल के लिए मायरा भी चौंक गई। उसे भी नहीं लगा था कि इतना जल्दी हो जाएगा। फैजान, जो मायरा को खुशखबरी सुनाने वाला था कि वो उसे लेने आ रहा है, उसने तलाक दे दिया। उसे यही सही लगा। मायरा के तलाक की खबर सुनकर रेहाना बेगम भी आ गई थीं। बहुत गलत हुआ, रेहाना बेगम ने कहा। बहुत सही हुआ, अरमान बोला। अरमान, जुबेदा बेगम ने टोका। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, गलत के खिलाफ होना सही बात है, अरमान ने जवाब दिया। तभी रेहान भी वहाँ आ गया। उसने पूरी बात सुन ली थी। तलाक, किसका तलाक हुआ, उसने पूछा। लेकिन जुबेदा बेगम ने जवाब देने के बजाय कहा, फैजान में इतनी हिम्मत कहां से आ गई इस तरह तलाक देने की। उन्हें समझ नहीं आ रहा था, वो लड़का 1.5 साल पहले घर से गया था और अब ये सब नूर की वजह से। मायरा ने जानबूझकर कहा, आप लोग अच्छे से जानते हैं उसने खुद मुझसे तलाक मांगा था, इसलिए उसे तलाक मिला। लेकिन वो बीच में नूर का नाम घसीट रही थी। उसकी बात सुनकर अरमान अपसेट हो गया, साथ ही रेहान भी। लेकिन नूर के लिए तलाक, रेहान ने हैरानी से कहा। सब तुम्हारी तरह मजबूर नहीं होते, मायरा ने ठंडे लहजे में कहा। तो क्या तुम जैसे लोग होते हो, खुद का घर संभलता नहीं और दूसरों के घर पर डाका डालते हो, साधिया जो इस वक्त वहां आ चुकी थी उसने कहा। साजिश और चालाकी से तुम जैसे लोग दूसरों के हक पर डाका डालते हैं, मायरा ने साधिया को जवाब दिया। रेहाना बेगम गुस्से में खड़ी हो गई। ये कौन सा तरीका है साधिया से बात करने का, ताई अम्मी आप देख नहीं रही ये मुझसे कैसे बात कर रही है, मायरा ने शिकायत की। उसे लगा था कि रेहाना बेगम और रेहान उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम भी तो उसी लहजे में बात कर रही हो, ऐसे ताने क्यों दे रही हो, अगर वो गिर जाती तो, रेहाना बेगम ने सख्ती से कहा। ताई अम्मी इन दोनों भाई बहन के गिरने में कोई कमी बाकी है क्या, मायरा ने ताना मारा। वो साधिया और फैजान पर इशारा कर रही थी। तुम्हारा और फैजान का रिश्ता खत्म हो चुका है, लेकिन मेरी बहू के बारे में एक शब्द भी मत कहना, रेहाना बेगम गुस्से में बोली। समझी तुम, मायरा हैरान रह गई। साधिया के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि असली सच्चाई अब भी मायरा नहीं जानती थी। रेहाना बेगम जुबेदा बेगम की तरफ मुड़ी। मायरा को समझाओ, मानती हूं इसे तलाक मिला है, ये परेशान है, लेकिन मैं अपने बेटे की होने वाली औलाद को खतरे में नहीं डाल सकती। ये सुनते ही मायरा के होश उड़ गए। रेहान भी हैरान रह गया, क्योंकि ये बात अभी तक उससे भी छुपी हुई थी। बाकी पूरा खानदान भी सन रह गया। डॉक्टर ने साफ कहा है साधिया को टेंशन से दूर रखना है, रेहाना बेगम ने आगे कहा। अगर इसे कुछ हो गया तो बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। अब सब कुछ साफ हो चुका था। चलो साधिया तुम मेरे साथ घर चलो, रेहाना बेगम ने नरमी से कहा। रेहान भी बिना कुछ बोले उनके पीछे चल पड़ा। मायरा वहीं सोफे पर बैठ गई, पूरी तरह से टूट चुकी थी। असल में रेहान से निकाह करने के चक्कर में ही उसने फैजान से तलाक लिया था। रेहान साधिया के पीछे पीछे कमरे में आया था, उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। सचमुच हमारा बच्चा आने वाला है, रेहान ने खुशी से कहा। वो आगे बढ़ा, उसने साधिया का हाथ पकड़ा और प्यार से उसके चेहरे को छुआ। तुम ठीक हो, उसने फिक्र से पूछा। मैं बहुत खुश हूं, रेहान ने खुद ही कहा, उसकी आवाज में सच्ची खुशी थी। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। खामोशी थी लेकिन बहुत कुछ कह रही थी। साधिया के मन में अलग ही ख्याल चल रहे थे।
अब रेहान कहीं नहीं जाएगा, अब वो हमेशा के लिए मेरा है। अगर उसका बच्चा आने वाला है तो रेहान उसे कभी नहीं छोड़ सकता। उधर रेहान भी खुश था, उसके चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई दे रहा था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। मैं एक मिनट में आता हूँ, ऑफिस का काम है, इतना कहकर रेहान कमरे से बाहर चला गया। लेकिन साधिया अब भी वहीं खड़ी थी, अपने ही ख्यालों में खोई हुई, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अब रेहान उसे कभी नहीं छोड़ सकता, अब उसे कोई तलाक नहीं दे सकता, क्योंकि वो रेहान के बच्चे की माँ बनने वाली थी।